गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
एक बहुत बड़ा अधिकारी था, उसने अपनी लड़की का विवाह किया अपनी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले, और उसको पता था कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने अंडर जितने भी अन्य अधिकारी हैं वो आओगे, कोई 1 लाख लेकर आओगा, कोई 50,000, कोई 10,000 दिखा दिखा के देगा, और ऐसा ही किया। फिर वो रिटायर हो गया, उस समय 3-4 लाख रुपये बेटी के ब्याह लगाए, ये सन 1988 की बात है, 89 की, उसमें 3-4 लाख तो आज के 30-40 लाख समझो। अब लड़की का विवाह कर दिया, 3-4 लाख रुपए लगाए, और कर्मचारी अधिकारी कोई 2,000, कोई 10,000, कन्यादान को 20,000, कोई 50,000, और फिर क्या हुआ, उस विवाह के 6 महीने के बाद उसको तलाक दे दिया उसके पति ने। अब उस झटके में उसने पता था इब्तया 4 लाख में लड़की ब्याही है, और दोबारा ब्याहूंगा तो 8 लाख लगेंगे, हार्ट अटैक होगा, मर गया, अरीब के बनेगा, अब गधा बनेगा वो, और जिस जिस से ले रखे थे उसके लठ मारेंगे, डोवेगा। परमात्मा के विधान से जब हम परिचित हो जाएंगे, हमने विष दिखाई देगा ये किसी से पैसा लेना, तो पुण्यात्मा इस प्रकार से यह स्थिति बदलेगी। तो पहले जो ये व्यवस्था थी उस समय किसी कोई भी लड़की का जन्म नहीं चाहता था, विवाह होते ही ये सोचा करता भगवान संतान हो और पुत्र हो। अब वो चाह रहा था कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री का को जन्म हुआ। फिर दूसरी बार देखा है भगवान, अब कह तो दया करे परमात्मा पुत्र हो, रुआ भी पुत्री होगी। अब तीसरी बार जब गर्भ रहा उसकी पत्नी को, परिवार को भी यही आशा हुई कि हे भगवान पुत्र हो, और वो भी पुत्री होगी, और चौथी भी पुत्री होगी, पांचवी भी बेटी होगी। अब क्या मनुष्य का चाहा हुआ, क्या मनुष्य का किया हुआ, वही हुआ जो उसके मस्तिष्क में पहले लिखा हुआ था। तो यहां अगर कोई ये सोचे तो इसको कहते हैं उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाथी लंदा। तो पुण्यात्माओं, जब हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे फिर हमारी 90% बकवाद हट जाएंगी। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जो आपके बहुत काम आऊंगी। एक समय एक गांव में, एक नगर में एक सेठ रहता था, और उसने अपने गुरुजी से जो ज्ञान प्राप्त किया था उससे यह पता लग गया था कि भाई अब ये व्यवसायिक जो लोग होते हैं ये इन्हें देखा करें कि भाई कहां मुझे लाभ होगा, इन मोक्ष से कोई लेना देना नहीं होता, तो उसने ये पता पूछ लिया अपने गुरुजी से जब सत्संग कर रहे थे, फिर बाद में पूछा कि गुरुजी यूं कहते हैं कि जैसे इस जन्म में किसी ने किसी से पैसा ले लिया और वो नहीं दे सका तो अगले जन्म में वो 1000 गुना करके वापस देना पड़ेगा। अखा बेटा ऐसा ही होता है। तो उस लाला जी ने क्या कराया, अपना बोर्ड लगा दिया दुकान के आगे कि अभी कर्ज ले जाओ जिसने कर्जा चाहिए। किसी ने लोन चाहिए ले सकता है, लेकिन अगले जन्म में लूंगा, इस जन्म में लूं कोई ना। अब ये जो पैसे के पुजारी होते हैं ये इसे इतनी गर्जन की वृत्ति बताते हैं। एक लाला जी मर गया, यम के दूत पकड़ के ले गए तो उससे पूछने लगे भाई तेरे को पहले स्वर्ग में भेजा या नरक में, क्योंकि तेरे इतने पुण्य इतने पाप। नो बोला दोनों के बीच में बिठा दे, नो उनके भी आओगे गा कर नरक वाले भी आओगे, दोनों के बीच में बिठा दो उन्हें। यानी वहां भी अपने बिजनेस पॉइंट व्यू से ही सोचा उसने। तो इसी दृष्टिकोण से उस लाला जी ने अपने गेट पर ये बोर्ड लगा रखा था कि अभी इस जन्म जो कोई लोन लेगा तो अगले जन्म में लूंगा उससे। दो ठग थे, उन्होंने वो बोर्ड पढ़ लिया, वो चले थे चोरी चारी करने, उन्होंने बोर्ड पढ़ लिया। दोनों बतलाए रही साहब मूर्ख, हमने जो पहली बार देखा है मेंटल तो नहीं है। अब उससे बात करी भाई लाला जी हमने 200-200 रुपये कर्ज दे दे, वो ले ले भाई। वो पक्का करे थे, वो कहने लगे भाई देखा हम तो जल्दी देवांगे, व्यवहार के पक्के आदमी हैं। वो कहने लगा ना भाई मैं तो अगले जन्म में लूंगा। अब उन्होंने फिर पक्का करे करना भाई हम तो 6 महीने के भीतर तेरे वापस दे देंगे ब्याज रुपया। वो बोला ये ब्याज लूंगा और अगले जन्म में लूंगा, ना तो जाओ तुम। तो उन्होंने सोचा अच्छा भाई ले अगले जन्म में ले, उन तो ठगना था ही वो। उन्हें दोनों ने अपने 200-200 रुपये या जैसा भी 100-100 या 500-500 लिए और दरे गठड़ी में चल पड़े। आगे वो चलते जा रहे थे, एक गांव के बाहर एक तेली का घर था। पहले तेली होते थे, कोल्लू चला करते थे बैल से और उसमें सरसों पीड़ा करते थे और तेल बनाते थे। उस तेली के आंगन में कोल्लू लग रहा था, एक बैल तो चल रहा था कोल्लू चला रहा था, एक वहां खड़ा था पेड़ से बांध रखा था। तेली किसी कामवश गांव में गया हुआ था, वो दोनों वहां रुक गए जलपान कर ले पानी पी लेते हैं। उन्होंने पानी पिया तो दोनों बैल बतलावे थे आपस में बातें कर रही थी। अब जो बैल चल रहा था उसमें कोल्लू में उसने पूछा जो बैल खड़ा था कि भी तेरा कितना लेन देन इस तेली के साथ बचा है। अब वो खड़ा बैल कह रहा है कि अभी कल जो है ना एक व्यक्ति आएगा और मुझे इससे मोल ले जाएगा 200 या 400 रुपए में। वो उस तेली का वो इतने पैसे मांगता है और वो जो मुझे लेने आएगा वो मेरे 1200 रुपए मांगता है। उसके सारा हिसाब किताब लाकर 1200 रुपए ब्याज ब्यूज के हो रहे हैं और वो फिर क्या होगा मुझे यहां से ले जाएगा। आगे एक राजा ने हाथियों का युद्ध करवा रखा होगा आपस में भिड़ंत और उसमें इनाम रखा होगा 12 रुपए का रखा हुआ है। मुझे वो ले जाएंगे, उनका वो तमाशा देखने लग जाएंगे हाथियों के झगड़े लड़ाई को और मैं उस हाथी को हरा दूंगा जिसने सबको पराजित कर दिया होगा और फिर मुझे 1200 रुपए का इनाम मिलेगा मेरे उस मालिक को जो यहां से ले जाएगा। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। भाई मैंने पिछले जन्म में उसने जो ना 20 रुपये लिए थे आज वो 1200 हो गए। तो उसने फिर पूछा कि भाई कोल्लू को चला रहा था, उससे पूछा कि तेरा क्या हिसाब किताब है तेली का और तेरा। उसने कहा भी मेरा इसका हिसाब पूरा होने वाला है और मैं इब घंटे दो घंटे में मर जाऊंगा। इतने में वो तेली आ गया और उनका कलेजा हिल गया। अकड़तरा गज बोलिए बैल बोले, और बैल बोले तो बस सच ये पाओगी, ये तो अनहोनी है, भगवान ने बुला रहा है इन्हें। तो उनने सोचा भी आज रुकना पड़ेगा यहाँ और कल देखेंगे यू मरेगा किस टाइम यू बैल और वो किस टाइम ग्राहक आएगा। तेली आ गया, उनसे पूछा भाई कौन हो कहाँ से आई हो। उन्होंने बता दिया ऐसे हम जा रहे थे रास्ते में पानी पीने लग गए। और वो तेली बोला भी कोई बात ना, अब देर हो गई है श्याम रुक जाओ सुबह जाइयो का। अच्छा भाई वो तो रुकना ही चाहते थे। दो घंटे के बाद वो बैल जो चल रहा था उसकी मृत्यु होगी जो कोल्लू चला रहा था। अब उन दोनों का दिल धड़क धड़क करने लगा रहे या तो साची हुई भाई। उधर से अगले दिन सुबह एक व्यक्ति आया और उस तेली से कहने लगा भाई कोई बैल बता मुझे या तेरे पास होता है बैल दे। अब तेली का ये डर हो गया कभी चलता चलता बैल मर गया, कोई बीमारी आ गई पशुओं में और इसने बेच दे जल्दी तो दूसरे को भी और लाऊंगा कोई। उसने उसके 500, 400, 100, 200 जिसे रुपये मांगे और उसने दे दिए। वो दोनों जने अपनी पोटली कड़क बांध गए, उस बैल लेकर गया था उसके साथ साथ चल पड़े। ये और देखेंगे वहां पर, ये बताए थे इन्होंने कि बैल हाथी को हराएगा। वहां क्या हुआ कि वो जाके खड़े हो गए, दंगल लगा हुआ था, हाथी आपस में कुश्ती कर रहे थे, एक हाथी सबको पराजित करता हुआ चल रहा था और लास्ट में वो अकेला खड़ा हो गया कि और लाओ वे जिसका कोई हाथी हो घुड़ाओ इसके साथ, ये केसरी हो गया। वो जाकर खड़े होकर तमाशा देखने लग गया, बैल पकड़ रखा था रस्सा हाथ में, वो बैल हाथ से रस्सा छुटा कर हाथी की तरफ भाग लिया। लंबे लंबे सींग थे पहने पहने, हाथी ने उसका सूंड मारा, वो सूंड लग गया सींग फंस गया सूंड में और हाथी मारे किल की चिंगाड़ बाज गया। हाथी का सूंड में दर्द बहुत होया करे, हाथी किलकी मारे रो और लीद कर, उसने सोची वीरा ने किया गया सिंगाला, हाथी भाग गया तो वो विजयी हो गया बैल। 1200 रुपए राजा ने इनाम दे दिया। वो 1200 रुपए उनके पास आए, उस बैल वाले के पास, उसी समय बैल की मृत्यु हो गई। अब वो दोनों जने उनके पैरों तले की जमीन खिसकन लगी, क्या तो बूंदी बनेगी, बैल बनना पड़ेगा इस लाला जी का जिसके पैसे ले आए हम। वो दोनों वापस आ गए। अगले दिन नौ के नौ दोनों ने पैसे रख दिए, सेठ जी अपने पैसे पकड़े, ये मारा पर उठते ही पे लाला जी ने ठाकर बार गली में फेंक दिए, अकमार मेरे लख कितने ले जाओ हम ना, मैं ना लू ही अगले जन्म में लूंगा। और वो ठाठा उल्टे जरे उसके हाथ जोड़े, लाला जी माफ कर दे अगले जा मैं ना लू कती भी। वो बार फेंक गए, उन्हें सोची बड़ा साका होया भाई। अब वो उठा कर उसने वैसे तो गेरे क्यों कर, क्योंकि देना पड़े वो तो बहुत सुरक्षित रखने पड़े उनको, कदे को छीन भी ना ले जा थारे ते बचाव रखे। तो उसने सोचा भी साधु संतों के पास इसका कोई समाधान होता है। एक संत कहीं बैठा था, वहां पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हम एक कसूते संकट में फंस गए, कोई समाधान बताओ। सारी कहानी बता दी। अब वो संत बोला भाई एक काम करो, इसका कोई धर्मपुन में ला दो उस लाला जी के नाम पे। तुम यूं करो एक धर्मशाला बनवा दो मेन रस्ते पे और एक कुआ बनवा दो, उस पर लिखवा दो लाला जी उस सेठ का नाम कि उसके नाम की धर्मशाला। और तुम यूं करियो उसमें किसी को रुकने मत देना और ना उस कुएं में पानी किसी को पीने देना, बोला जी फिर क्या होगा, फिर तुम बताओगे क्या होगा, और जो मैं कहूं इतना कर दो। अब वो उन्होंने सोचा भी महात्मा ने जो कहा है तो बात फिर ये जाना आगे क्या होगा। उन्होंने एक मेन रस्ते पर जो स्टेशन से उतर कर गांव को आता था, स्टेशन से उतर करके जो यात्री आते थे उस नगर के, स्टेशन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था नगर से, उसके बीच में बनवा दिया, उसके अब दो ढाई किलोमीटर था तो 1.25 किलोमीटर दूरी पर बना दिया, और वो कुआ बना दिया, एक धर्मशाला बना दी, लिख दिया लाला जी का नाम जिस पर उन्होंने लोन लिया था, उधार ली थी। अब वहां यात्री आवे और पानी पीने या थोड़ी देर विश्राम करने के लिए धर्मशाला की तरफ जाऊं, वो दोनों लकड़े लट लेकर खबरदार दे यहां आगे होता है, चलो यहां से। तो वो कहने लगे भाई क्यों तुमने धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, तो रुकने क्यों नहीं देते, जल क्यों नहीं पीने देते। अकेला लाजी ने पूछ लो भाई, इसने मना कर रखा है कि यहां हम दोनों नौकर छोड़ रखे हैं और कह रखे ना इसमें किसी को रुकने देना ना इसमें पानी पीने देना किसी को। इवाम आदमी ने बोले बड़ा मूर्ख आदमी, इतना पैसा ला दिया और फिर किसी को यहां टिकने भी नहीं देते, आयो यु कैसा लाला जी, सब गाड़ी देते जावे। एक दिन उसका समधी आ गया, उसके लड़की ब्याह रखी थी, वो समधी भी आया, उसने देखा पढ़ा अको होता अपने ही रिश्तेदार का बनवाया हुआ है, और अच्छी मरोड़ इसी में पहुंचा, चला उधर को, वो दोनों लकड़े लट ले गए, खबरदार जो इधर आया है। वो कहने लगा क्या बात भाई, मैं इसका रिश्तेदार हूं। ने बोला बाहर चल तू किससे का रिश्तेदार हो, इसने ये कह रखा इस सेठ ने कि इस धर्मशाला में कोई रुक नहीं जा और इस कुएं से कोई पानी नहीं पी ले, मारी ड्यूटी ला रखी। वो कहने लगा रहा ये बड़ा नालायक आदमी, मैं तो इसको बहुत अच्छा आदमी समझू था रिश्तेदार को, ये तो जमा दुष्ट इंसान है, है? बता प्याऊ बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, धर्मशाला बनवा रखी, और किसी को रुकने नहीं दे रहा। वो आया फिर अपने रिश्तेदार के घर आना ही था उसने, तो उसने उससे कहा रे तू बड़ा निकम्मा आदमी, क्यों तो इतना पैसा लगा हुआ था तेने, वहां कितने पैसे लगा रखे, धर्मशाला बनवा रखी, कुआ बनवा रखा, और वो दो मस्टंडे छोड़ रखे तेने, ना पानी पीन देंदे किसी ने और ना हुआ रुकने देते, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद किया, तेरी बुद्धि खराब होगी क्या। अब उन्होंने सोचा भाई कौन सा कहां धर्मशाला है, कौन सा कुआ है। वो काफी देर सोचता रहा क्या बात है, क्या कह रही हो आप, कह के मैं झूठ रहा हूं, तेरा नाम लिख रखा और तेरे नाम से धर्मशाला बनवा रखी, कुछ लाला जी ने धर्मशाला बनवा रखी है, उसी ने ये कुआ बनवा रखा है, और वहां दो खड़े हैं, वो लटली इन्होंने किससे न्याण दे, लाला जी ने कह रखी है। उसने सोची देखू तो कहा, वो उस दोनों जने आए देखे तो वो खड़े सामने लट गए। वो जान गया कि ये तो भाई मेरी बेइज्जती करवा दी न थे, तो कहने लगे भाई तुम क्यों कर पीछा छोड़ो मेरा। वो सेठ बोला न बोला मारी वो कलम तार दे और कह दे मेरे आए हो लिए, भाई ये दो जोड़े हाथ मैंने तुम्हारे अपने लोन खत्म कर दिया और मान लिया वे तेरा तुम्हारे सारे पैसे आ गए, मेरी बेइज्जती ना करो तुम। तो वो अपने गए और फिर मजदूरी करके अपना गुजारा किया, साधु संतों से उपदेश लिया, भक्ति की कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं ये सत्कर मान लेना, भले ही आपको एक दंत कथा लगे लेकिन ये आपके हृदय में उतर जानी चाहिए। आज क्या हालत है जीव की, तो इस प्रकार जब अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा आपको, आप ये गलती नहीं कर सकते हैं। ये दास देख रहा है, पहले शराब पिया करते थे, ताश खेला करते थे, दुनिया ने लूटा करते थे, 2 के 20 बनाया करते थे, चाहे कोई दूध बेचता था या कोई दुकानदार था, और दूनी ब्रांड में ट्योरी थी उनकी। और आज वो प्राणी है, किसी का 10 रुपए आ जाते हैं ना गर्दे काम वापस। एक बहन बता रही थी कि मैंने एक लाला जी से कपड़ा लिया, उसने रेट बताया, कम बत्ती करके जो हमारा फाइनल रेट हुआ वो 200 रुपए का हुआ, और मैंने उसको 1000 का नोट दे दिया, उसने मेरे को 1250 रुपए वापस दे दिए। ठुक करके उसका धोखा लग गया। तो मैंने उस टाइम तो ध्यान रहा नहीं, और घर आके देखा कि मैं तो इतना का सामान लाई हूं, इतना पैसा मेरे पास, ये फालतू आ गया सेठ का। अगले दिन गई और उसके वापस पैसे दिए उसने, जितने भी वो फालतू थे। वो उसके मुंह का नहीं देख है, ए बेबे ए बेटी तू तो देवी उतर रही है, यहां तो ठा ले जा, वापस देने की बात दूर से, जब दाव लग जाता कि मैं और भी ठा ले जा लोग हैं, और तू वापस देन आ गई, मेरा तो याद भी ना थे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार फिर आप के पास किसी का एक नया पैसा भी हजम नहीं हो सकता, आत्मा नहीं मानना आपकी, क्योंकि इसको पता है फिर के दुर्गती होगी और कैसे पूरे करने पड़ेंगे। गधा बनकर कुम्हार के घर पे ये प्राणी उसके पूरे करेगा, और फिर कितना कष्ट उसके ऊपर से गुजरेगा वो ही जाने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं अपनी महिमा बताने के लिए कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब हम परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर हमारी एक विशेष व्यवस्था बनेगी, आत्मा के अंदर एक विशेष उभार आवेगा। अब देखता ये दास आज भी कम से कम 4 भक्त आए थे, नो बोले जी रस्ते में 100 रुपये पड़े पाए, अब वहां देवा किसने, यहां दान कर दिया, घर पर नहीं प्रयोग हो सके। और पहला के सतीथी थी, नो देख कर ठा करते को देखते ना ले, और गोज मगा लेते। तो ये वृत्ति हमारी बदलती जा रही है। कोई कहता 500 रुपये, कहता जी ऐसे 5000 रुपये पड़े मिले मुझे, और जा रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे इसका कुछ गुम हो गया। मैंने उससे पूछ लिया, भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे के? वो कहने लगा, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे पैसे गिर गए और जेब मत निकल गए, किस प्रकार मैं कुछ सामान निकालूं था, और सारे देख लिया मैंने, पाए नहीं। कितने पैसे थे तेरे भाई? के 5000 रुपये थे, ये नोट थे। बोला नो के जब मैंने उसको निकाल के दे दिए कि ये थे। उसने सीने से लगा लिया मेरे को, ने बोला राज के युग में इसे देवता बचे हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे यह बिल्कुल सतीथी बदल जाएगी, और आपकी आत्मा इतनी खुश होगी उस पैसे को वापस दे करके। और यदि हम किसी की चोरी करते हैं तो दूना दुख होता, उस प्राणी का दूना विनाश होता है। एक भक्त बहुत गरीब था, किसान था, और उसने परमेश्वर कबीर जी, क्योंकि वो परमात्मा रह रह कराते रहते हैं, कभी किसी साधु रूप में, किसी संत रूप में, या किसी वैसे एक जीवन वो पूरा एक जनसाधारण जैसा जी कर भी पूरा करते हैं। तो वो गरीब आदमी था, वो कहने लगा महाराज जी बहुत ही स्थिति खराब है, परमात्मा का ज्ञान सुना, परमेश्वर ने कहा बेटा नीत साबित रखिए, कमी नहीं रहेगी, और ये भक्ति करता रहे, जितना तुझे चाहिएगा भगवान 21 देगा तुझे। अब क्या हुआ कि उसके एक बैल था, उससे गुजारा कर रहा था, एक चोर था। उस चोर ने क्या सोचा, वो चोरी करने के लिए निकला, उसने देखा एक गरीब व्यक्ति और गर्मी के दिनों में सो रहा है, उसके एक बैल बंधा है, उस एक बैल ने चुरा ले गया। अब चोर तो क्या है, जैसे 100 रुपये का बैल होगा, उस समय की बात बहुत पुराने समय की है, तो किसी समय में ला लो, इसको तो एक उदाहरण है और सच्चाई है। तो उसने तो 10 रुपये का बिक गया, वो भी बेच दिया कि कहीं कोई पकड़ा ना जाता हूं, या 20 रुपये का, और बेच ब्याज खा पी कर फुर वो तो फिर उसाय हो गया। उसने कुछ दिन के बाद फिर ऐसे चोरी करता करता उसने सोची, चलो उस जिसका बैल चुरा कर लाया था वो शरीफ आदमी लग गया ना, को पुलिस रिपोर्ट करी उसने, उधर ही चलते हैं। वहां जाकर देखा उसने एक वर्ष या दो डेढ़ वर्ष के बाद क्या देखा कि उसके दो बैल बंधे हुए हैं बहुत अच्छी सती थी के, और वो सो रहा है रात्रि के समय। उस चोर ने उसके दोनों चुरा लिए, दोनों बैल चुरा लिए और ले गया उनको बेच ब्याज के और अपना कर दिए फुरफरा। वो फिर नो के नो उसको फिर टोटा सताने लगा, वो फिर चला, वो इधर उधर घूमता गांवता। उसने सोचा एक बार फिर उधर देख लूं, वो तो शरीफ आदमी है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी नहीं कर रहा, ना कितना किसी खोजी को लेकर पीछे चलता है। उसने वहां जाकर देखा, क्या देखा कि उसके चार बैल बंध रहे, चार बैल नुखागड़ के से। अब उस चोर ने सोचा भाई मेरा तो नाश हो लिया और तीन बैल चुरा चुका मैं इसके, और इसके आज चार बैल बंधे हुए हैं, भाई ये कौन सा जंतर मंत्र है इसके पास, इसने यो पूछूंगा मैं तो। और उसका उसने वो वहीं सो रहा था किसान, उसको उठाया कि भाई उठना एक बार। वो किसान कहने लगा, सोया था ने बोला भाई मुझे मत छेड़, मुझे सोने दे, सारा दिन काम किया है, नींद अभी लेटा हूं, सोने दे। वो कहने लगा भाई मैं चोर हूं। वो चोर कहने लगा मैं चोर हूं, चोर हूं। ने बोला भाई चोर है ना, अपना काम कर दो, तू आया है, मुझे अपना सोने दे। अब वो कहने लगा रहा जो काम मैं करना चाहूं था वो मेरे अतीब होता को ना, इसलिए तुझे जगाऊ हूं ना, मैं कितने जगाऊ वो, अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास भाई। फिर उसने बताया भाई चाहे मारिए चाहे छोड़िए मुझे, चाहे सजा दिए दंड दिए, अब सच्ची बात बताऊंगा, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा कर ले गया था और मैंने तो वो अपना वो पैसा मेरा न्यू गया बर्बादी में, और तेरे दूसरे दो बैल भी मैं चुरा कर ले गया था, आज मैं जो का तू उसी स्थिति में हूं और तेरे ये चार बैल बंध रहे हैं, इसलिए आज से मेरे पर चोरी ना होती भाई। अब मैं चोरी करने की स्थिति में नहीं रहा, मेरा हाथ कांप रहा है, सारा शरीर कांप रहा है कि ये देख तेरा तो नाश हो जाना चाहिए था, तेरे पास तो कुछ था ही नहीं उस दिन, तू बहुत गरीब था, तेरे मकान भी सुथरा बना लिया। तो वो बैठ गया, फिर ने बोला भाई जब तने आए जड़ी पूछ ली तभी बताऊंगा, बैठ जा तू भाई। अगर इस चोरी करने से कोई सेठ हो साहूकार बने तो कोई करके नहीं खावे, सब चोरी कर ले, तूने तो भाई घोर पाप इकट्ठा कर लिया, परमात्मा की भक्ति कर, मैं बताता हूं मैं कैसे, मुझे भगवान सहारा दे रहा है, मैंने गुरु बना रखे है, और तू चल तुझे नाम दिलाऊंगा अपने गुरु जी से, और तो भी तेरी भी ऐसी मदद होगी। वो बोला भाई ठीक है, मुझे कुछ भी दिला कुछ भी बराबर, पर मुझे या जड़ी बता दे जो नूर सेठ होया करे। गुरु जी के पास ले गया, उसको बताया, फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई कि महाराज जी मैं कति घना ढेर आदमी हूँ, नीच व्यक्ति हूँ, और मैंने इसके तीन बैल चुराए, आज मेरे पास एक भी नहीं और पैसा भी खाने को नहीं, बालक भी भूखे बैठे हैं और आपके चेले के ठाठ हो रहे हैं, मैं या युद्धंतर पूछने आया हूँ। परमात्मा बोले ले भाई युद्धंतर तू भी ले ले, नाम ले भक्ति कर, और बेटा तो भी ऐसे सुखी हो जाएगा, पर आज के बाद चोरी ना करिए। कान पकड़ दिए, अगर नहीं गुरुदेव सुपने में भी नहीं करूंगा, और भी करता होगा मेरे मित्रानु ने भी समझाऊंगा भाई यू काम करने का कोई नहीं। फिर वो देखो पुणात्मा कहां तक इन पता लग जाए यू चोर है, उसकी देही तोड़ जाए नहीं उठता है, और 20 साल उन्होंने बुलाओ भाजी हो रहा है, भाजी हो रहा है, चोर ठह गया, और उसने न्यो भी ना पता लागण दिया पड़ोसियां थे कि चोर था, मेरे बैल खरीद करके चोरी करके ले गया था। तो पुणात्मा परमात्मा पर विश्वास जब हो जाएगा आप पे, आपका आप भी एकदम नेचर बदल जाएगा आपका। उसने मित्र समझ लिया उसको कि चोखा भगवान का नाम ले लिया, इसके बच्चों का कल्याण होगा, इसका होगा, मेरा क्या बिगाड़ दिया इसने, अपने कर्म फोड़ दिए। उसको घर पे लाया, फिर वापस नवला रोटी खा और रुक रात में, और कल ये बैल ले जा, तू एक और दूंगा तेरे को, और अपनी कमाई कर और भाई अपने बच्चे पाल ले। अब वो एक बैल ले गया चोर, अब उसने अपनी गलती मान ली, प्रायश्चित कर लिया, अपनी लगा खेती करने। अब 2 साल के अंदर वो 4 बैलों के पैसे लेकर और वापस आया, जिसके वो चोरी करके ले गया था 3 बैल उसके, और एक वो उसने उधारा दिया था। 4 बैलों के पैसे लेकर उसके पास पहुंचा 2-3 वर्ष के बाद, के ले भाई ये तेरे बैल चुराए थे उनके पैसे, अरे का आपने मुझे उधारा दिया था इसके पैसे, आज मैं परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर बख्श दी और सब तरह से मैं सुखी हो गया। पहले भी आता रहता था, सत्संग सुनता रहता था, विचारधारा परमात्मा से सुनता रहता था, फिर उस दिन वो लेकर आ गया पैसे, पता लग गया कि इसका लोन मैं क्यों रखूं अपने सिर पे। तो उसने कहा भी मैं ना दूं एक ना पैसा तेरे, तो मेरे तो भगवान ने ठाट कर रखे, तो इस पैसे को चल गुरुदेव के चरणों में रख दे, तेरा धर्म में लग जाएगा। ऐसा ही किया गया। तो पुणात्माओं, ये बातें कर्ण सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये सच्चाई है कि आप देखना इस परमात्मा के हाथ एक बार लग कर देखो सच्चे दिलते हैं। और फिर आज तो आप लूटते हो दुनिया को, कोई रिश्वत लेता है, कोई मिलावट करता है, दोनों दुखी हो रहे हो, इधर से नुकसान हो रहा है, उधर से आप अपनी नेत्र खराब करके भाव बिगाड़ करके चोरी रिश्वत लेते हो, और फिर आपके आत्मा में कैसी शांति होगी। एक तो ऐसा माहौल बदल जाएगा कि विष दिखाई देगा आपको, उसके विषय में परमात्मा बताते हैं, जब तुझे ज्ञान हो जाएगा, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। ओए होए, जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक कण पड़ा है विष का, ये विष का कण है, आपको पक्का पता है कि विष है, कहते हैं उस कण को भी कौन जीव बदर ऐसा मूर्ख कौन है। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो, कि फिर आपके घर में एक न्यारी खुशी होगी, आपकी आत्मा में न्यारी खुशी होगी, और ये एक दूसरे से लूटना खसोटना बुरी नजर रखना बुरा कर्म करना ये एक विष दिखाई देगा। फिर उस विष को जब आपको पता चल गया ये विष है, फिर खा के दिखाइए उसको, अब तो हम अनजान पड़े में ये जुल्म कर रहे हैं और फिर उसका दंड भी हम भोग रहे हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने परमात्मा को पहचानना होगा, और जो समर्थ परमेश्वर है वही हमें ये सुख दे सकता है, हमारे भाग्य से भी अलग, किस्मत में ना होगा तो भी आपको देगा। और आपने पहले इस परमात्मा की शरण में आने से पहले चाहे कितनी ही गलतियां कर दी हों, क्योंकि वो आपकी अनजानपने में की गई गलतियां हैं, अज्ञानता से की हुई गलतियां हैं, और काल प्रेरणा से की हुई गलतियां हैं, वो परमात्मा खूब समझते हैं कि इस जीव के बस का नहीं, ये काल ने इसको इतना भ्रमित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकता है। और फिर ये ऐसा विधान बना के छोड़ दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, बुरे करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, शुभ करेगा तो उसका अलग डिपॉजिट, और इस लोक में शुभ करने के लिए तो बहुत प्रयत्न, अशुभ करने की जरूरत नहीं आप पे होंगे। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, जो चौका तुम दे वो नित्ता, सत्र ब्राह्मण की है हत्या। अब जैसे डेली पोचा मारते हैं, या वैसे लीपते हैं या वैसे सैर सपट्टा करते हैं या कोई खेत में हल जोतता है या मजदूर कस्सी से खोदता है, करोड़ों जीवों को मारकर श्याम को विश्राम करता, इतने पाप इकट्ठा कर लेता है। और पुण्य एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उसको कोई लाभ नहीं होता, न उसको सुख होता है, न उसकी गति होती है, न उसके कोई कार्य में कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उसको कोई सुख होता है। गीता के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं। अब आज तक इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि आप क्या साधना करते थे, मनमाना आचरण करते थे, मनमानी पूजाएं करते थे जो आपको कुछ भी लाभ देने वाली नहीं थी। तो जो पूजा साधना आप करते थे वो तो यूजलेस, और जो भी दान आप करते थे बिना गुरु के, क्योंकि पूरे गुरु बिन बात नहीं बनती, इन नकली गुरुओं को निकली मेहनतों से आपने उपदेश ले भी लिया, गुरु शिष्य बन भी गए, तीन से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पुण्य तो एक भी नहीं बने था और पाप इतने बने दिन में गिनती नहीं हुए। तो आप जब तक पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी की शरण में इस दास के माध्यम से नहीं आओगे, नकली कबीर पंथियों से भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। इस दास के अतिरिक्त सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, ये कबीर पंथ में भी इनके पास सतनाम नहीं है, इनके पास सारनाम नहीं है, और सतनाम और सारनाम ही मोक्षदायक है और पाप नाशक है। वो केवल इस दास पर रजा बख्शी है परमेश्वर, ये सत्कर मान लेना, ये अभिमान नहीं, ये सच्चाई समझना। तो उसके अतिरिक्त जो भी आप साधना कर रहे थे वो तो यूजलेस थी, कोई पुण्य नहीं, और पाप आप पर बने थे, पापों का ढेर लगता चला जावा था, और आपके जो पिछले संस्कार पुण्य थे वो इस जीवन में समाप्त हो जाने थे। और फिर अगले जन्म में क्या होगा, वो पाप भोगने के लिए 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जीवन में आप जी की ब्रांड मट्टी शुरू हो जाती है, दुर्गति शुरू हो जाती है। एक जीव का आप देख लो जीवन, क्योंकि अब तो आपका नशा हो रहा है, दो टाइम पर टूक मिल जाए, अच्छी मोटरसाइकिल कार होगी, सामने गुटी ला लें, अब फिर पता ही नहीं क्या होगा आगे, इतनी सोचने की समय नहीं छोड़ रखा काल ने। लेकिन इस सत्संग माने से आंखें खुल जाती हैं पुण्यात्मा की कि क्या कर रहा था और क्या करना चाहिए था। फिर ये इन प्राणियों को देखकर चिंतित होता है, भगवान यदि आज भगवान कबीर साहब की शरण ना मिलती तो हम भी ऐसे ही भटक रहे होते, कहीं पशु बनते कहीं पक्षी बनते। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस ज्ञान से जो पुण्यात्मा होती है उनको एक डर विशेष बनेगा और भय बिना भक्ति बने नहीं। अब जैसे कई व्यक्ति कह देते हैं कि जो संतों ने वाणी बोली है, एक तो यथार्थ, एक भयानक, एक ऐसी एक वैसी, जैसे कोई कहता भी किसने देखा आगे क्या होगा, पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, ये तो कहने की बातें हैं, ये तो डराने के लिए होती हैं। अपुन आत्मा कोई चोरी चोर करता है, उसको कोई बुद्धिमान जेंटलमैन बताता है कि भाई चोरी ना कर, चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस पकड़ेगी, तुझे कुटेंगे, काला मुंह करेंगे, तेरी सजा होगी, ऐसा ये गलती ना करें। और वो न्यू सोचा है कि ये तो डरावे हैं, डरान के मारे कह रहे हैं, कुछ नहीं होना। लेकिन जिस दिन वो पकड़ा जाएगा चोरी करता, उसका बक्कल भी उतरेगा और उसका काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी ठोका जाएगा, वो सारे काम बनेंगे उसके साथ में। अपुन आत्मा यदि वो व्यक्ति उस जेंटलमैन की, वो चोर जेंटलमैन व्यक्ति की बात को मान लेता और उस डर जाता उससे, तो उसका समाधान हो जाता, वो डर भी था और सच्चाई भी थी। और उससे न डर कर उसने कितना काम बिगाड़ लिया। इसी प्रकार ये सच्चाई भी है और डर भी लगेगा, और भय बिना बात बना नहीं करती। और डर कब लगता है? जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा बालक अबोध बच्चा सर्प को पकड़ लेता है। एक बहन बतावा थी कि मेरी लड़की का लड़का आंगन में खेल रहा था, पशुओं का आंगन था, पशु खेतों में चले गए थे और उसकी माँ उसको वहां छोड़कर पशुओं का गोबर बाहर डाल रही थी। एक सर्प आ गया, काला सर्प, उसने जाके उसको अच्छी वस्तु जान के न्यू पकड़ दिया। पकड़ते ही वो हाथ पर डस गया, उसने वो छोड़ दिया, वो खिसक गया। कुछ देर के बाद उसका हाथ सूजना शुरू हो गया। अब वो बच्चा बता नहीं सकता, उसकी माँ पूछे क्या लग गया। उस समय तो उसको कोई बच्चे को दर्द भी महसूस नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी सी वो बोलता था, ज्यादा वासा नहीं बोल पा रहा था। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बताया कि इसके किसी विषैले जानवर ने काट रखे हैं। फिर बच्चे से पूछने लगे, बेटा कैसा था, क्या था, किसने डस दिया? वो कहने लगा भैंस की पूंछ कैसा था, काला काला। अब उसको ये नहीं मालूम था ये सांप था, उसने वो सांप पकड़ दिया और उसने वो डस दिया, तो मुश्किल से जान बची उस बालक की। एक हफ्ते के जाकर ओसमाया वो। तो कहने का भाव ये है कि जब वो बच्चा स्याणा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो सर्प को इतनी दूर से देखकर भाग लेगा और उनको भी कहेगा सर्प आ गया, भाग लो सांप आ गया। तो पुण्यात्मा इसी प्रकार आप जी अबोध बालक हो जो गलतियों पर गलती कर रहे हो, इसका बहुत दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको इस तत्व ज्ञान से ये ज्ञान हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी उठ जाएगी, आपको विष दिखाई देगा, वो सर्प दिखाई देगा जो कर्म आज कोई कर रहा है, चोरी जारी रिश्वत का या दहेज आदि ले करके अपने कर्म बिगाड़े हैं। ये नहीं होगा फिर आपसे, हो ही नहीं सकता, और इसकी आवश्यकता कति नहीं। हम कितना दूसरे के धन को लेकर सुखी हो सकते हैं, अपना इतिहास पढ़ लिया, सुन लिया कथा, ये सच्चाई है, सत्कर्म मान लेना। तो पुण्यात्माओं इस तत्व ज्ञान से आपकी पूर्ण रूप से आत्मा निर्मल हो जाएगी, और फिर इस निर्मल बुद्धि आत्मा के अंदर ये सतनाम रूपी बीज आप में बहुत अच्छी तरह फल फूल लगा। भगवान की भक्ति शक्ति आपको इतना सुख देने लग जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते कि सचमुच भगवान ऐसा अब भी कर रहा है। पिछले उदाहरण सुना करते थे हम कि भगवान ऐसा दे दिया, उसको ऐसा कर दिया, आपको वर्तमान में दिखा देंगे। रोज कथा सुनाया करोगे अपने मित्रों को कि आज मेरा इतना ऐसा हो गया, ऐसा सुख हो गया। ये वो परमात्मा है, परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हम सभी के जनक हैं, कुल के मालिक हैं, हम सभी आत्माओं के एकमात्र वो हितैषी हैं। और इसीलिए वो अपने सतलोक को छोड़कर, इसे सुंदर इतने अच्छे लोक को छोड़कर यहाँ आते हैं, गंदे लोक में कुछ समय रहते हैं, और उस समय हम काल प्रेरणा से उनके साथ कितना दुर्व्यवहार करते हैं। पुण्यात्माओं एक जब परमेश्वर यहां आए हुए थे, एक रामानंद नाम के महर्षि थे, ब्राह्मण, और उनका बहुत बोलबाला था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और वो उनका प्रचार किया करते थे। महर्षि रामानंद जी द्वारा निकाले निष्कर्ष कंक्लूजन जो उन्होंने वेदों गीता और पुराणों को पढ़ा था, उसके आधार से वो अन्य जनता को शिक्षा दिया करते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी जब 5 वर्ष के हो गए थे, उन्होंने एक उस ऋषि को, विवेकानंद नाम था उसका जो रामानंद जी के शिष्य थे, उसका सत्संग सुना। वो वैष्णु साधु थे, विष्णु जी की महिमा सुनाते थे, विष्णु जी को सर्वेश्वर बताया करते थे, श्री कृष्ण जी को परम शक्ति बताते थे। परमात्मा ने प्रसन्न किया उस विवेकानंद से कि महर्षि जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप जी कह रहे हो कि भगवान विष्णु जी का कहीं जन्म नहीं हुआ, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने शिव पुराण में कथा सुनी थी एक ब्राह्मण तय रुद्र संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है पांचवें छठे सातवें आठवें अध्याय में कि सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा इस शक्ति से दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और शिव की उत्पत्ति हुई। और देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। अब उसके पास वो रखी हुई थी पुस्तकें, उसने उठाकर देखी विवेकानंद ने, अब परमात्मा के दिए ज्ञान से उसको कुछ पढ़ने को मिला कि सचमुच इसमें कुछ लिखा तो है कि विष्णु जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं से हुआ। लेकिन उन आत्माओं जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती यह बात आंखों देखकर भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि विवेकानंद और हम सभी ने पहले कुछ भी नहीं सुन रखा था, अपने सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था और लोक वेद इतना सुन रखा होता है कि आंखों देखकर भी सदग्रंथों को विश्वास नहीं करते, इसमें जो लिखा है यह सच्चाई है, हम उस लोक वेद पर दृढ़ रहते हैं। ऐसी ही स्थिति विवेकानंद की हो गई, आंखों देखकर भी नहीं माना। दूसरा कारण ये था उसको पता था कि संस्कृत मेरे सिवा यहां कोई नहीं जानता, जितने श्रोता है कह दिया कि झूठा है, ये झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के थे, तिलक लगा रखा था जैसे वैष्णव साधु लगाया करते हैं। विवेकानंद जी ने पूछा कि तू कौन है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? तो परमेश्वर कबीर जी के बोलने से पहले ही श्रोता कहने लगे ये तो उस नीरुधानक का बेटा है, दुल्हे का बेटा है, इसका कबीर नाम है, इसकी तो आदत खराब है, ये किसी भी ऋषि महर्षि के पास जाकर उठपटांग बातें करता है, सबको ऐसे ही पूछता रहता है। एक आध श्रोता ही ऐसे बोलने लगा तो विवेकानंद ने पूछा कि तू इतनी गहरी बातें सदग्रंथों की बोल रहा है, क्या तूने कहीं दीक्षा ले रखी है? कबीर परमेश्वर ने कहा कि हाँ मैंने गुरु बना रखा है। उस विवेकानंद जी ने पूछा कि तूने कौन गुरु बना रखा है? कि जो आपने बना रखा है वो मैंने बना रखा है। अब विवेकानंद जी कहने लगा तू सीधे मुंह बात कर, तू जुलाहे का सूदर का लड़का और मैं ब्राह्मण और मैंने महर्षि रामानंद पंडित से नाम ले रखा है, वो तेरे जैसे सूदरों की तो शकल भी नहीं देखता, तू झूठ बोलता है, कपटी है, देखो रे लोगों ये क्या बकवास कर रहा है, मेरे गुरुजी की बेइज्जती करता है, शूद्र होकर के मेरे स्वामी जी से इसने नाम ले रखा है, कल देखना इसकी वहां श्यामत आएगी, तुम सभी आना और गुरुजी के सामने हैं इसकी इसको लाएंगे बुलाएंगे और तुम देखना ये कितना झूठा है, इसने कोई नाम नहीं ले रखा। अपने आत्मा अगले दिन 10 मस्टंडे पकड़ के ले गए कबीर परमेश्वर को, बालक को, 5 वर्ष के बच्चे को, रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया। रामानंद जी झोंपड़ी के अंदर अपनी कुटिया के अंदर बैठे थे, सामने पर्दा लगा लिया था, विशेषकर उस दिन गेट के ऊपर के आज जुलाहा कबीर को लाया जाएगा और मैं दिखाऊंगा इनको, मैंने इसको कोई उपदेश नहीं दे रखा। ऐसा ही हुआ, पर्दे के अंदर से पूछा स्वामी जी ने कि तू कौन जात है तेरी और किस पंथ से यानी संबंधित है, तेरा कौन सा पंथ है? आप देखो पुण्यात्मा, परमात्मा सामने खड़े हैं, एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद अंदर से कैसे भगवान के साथ दुर्व्यवहार करता है और बाद में कैसे स्वीकार करता है। हमारी सबकी ऐसे बुद्धि जो है ना भ्रमित है, काल ने हमारे नशा कर रखा, मांडी पा करे हैं और किसी का कोई ब्योत नहीं, धरती तोलते फिरते हैं, एक मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा मुंह बावे, माए मक्खी निकले और बड़े मुंह में के हाथ भी ना उठे जीव का, और पता नहीं एक मिनट में के कुकर्म करने तैयार हो जा। तो ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी को विद्या का, किसी को जाति का, किसी को पद का, किसी को धन का, ये अभिमान जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ गुरु और शिष्य की आपस में जो वार्ता होती है थोड़ी सी वो सुनाएंगे, और जो दास आपको सुनाने जा रहा है उसका भूमिका बना रहे हैं। आड्डा पर्दा लाए करे रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि ही अदुर डाक कूदंत, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति वो बोलत है बलि जाऊं में, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अब यहाँ पर आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी की महिमा आंखों देखी अपने उनके द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान से मैं ही लिख रहे हैं, उन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त उस दिव्य दृष्टि से देख कर लिख रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना रामायण और कलियुग के अंदर ज्यों की तू अपने सिंपल लैंग्वेज में यथार्थ चित्रित कर दी थी, लिख दी थी, इसी प्रकार गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की, परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वो यथार्थ घटना लीला अपनी अमृतवाणी में बोली, कैसे कैसे वार्ता हुई थी उनकी, तो गरीबदास जी अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या। इसलिए यहाँ गरीबदास शब्द आ रहा कबीर जी के स्थान पर। कबीर परमेश्वर क्या बोले, रामानंद जी ने पूछा कौन तुम्हारी जाति है और क्या तुम्हारा नाम है, तो गरीबदास जी कहते हैं अधीन होकर जैसे गुरु जी के सामने एक शिष्य सुयोग्य शिष्य को व्यवहार करना चाहिए ऐसे कर रहे हैं, और क्या बोले, बोलत है अधीन गति, आधीनी से बोल रहे हैं गरीबदास जी, कहते हैं मैं बलिहारी जाऊं उस परमेश्वर के समृत शक्ति होते हुए इतने भी नम्रता से बात कर रहे हैं छोटे से जीव के सामने। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़ा मेरा नाम निरंजन कंत। पुण्यात्मा और इस परमात्मा की ये घटना लीला याद आती है, क्योंकि आप जिनने इतना सुन नहीं रखा, नए नए भक्त आए हैं, इस दास जी को जब ये बातें चित्रित होती हैं, वो घटना इधर परमात्मा खड़े हैं 5 वर्ष के बालक के रूप में, महर्षि रामानंद जी बैठे हैं, और अपने एक जीव को सद्बुद्धि देने के लिए परमात्मा कितना कष्ट उठाते हैं। अब रामानंद जी गालियां दे रहे हैं भगवान को और वो करबद्ध खड़े हैं, तो पुण्यात्मा हमारा हितैषी कौन है, एक शराबी बालक लड़का, बाप ने बुंडी अच्छी कह देता है और वो बेचारा आंखों मासू बहाता बैठ जाता है, और फिर भी ये सोचता है इसकी नशा उतर जाएगा तब ये ठीक बोलेगा मुझे। तो पुण्यात्माओं यही स्थिति आज हमारी है। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुए भांग पड़ी।